ओम शांति। तो आज हम जो परंपरा से जो लोकावृत्ति चलती है, कहावृत्ति चली आती है, उसके बारे में, जैसे कि आज का टॉपिक है जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो बातें कभी न कभी बनी है, परंपरा में यूज होता है, तो कभी न कभी उसकी बैटरी भी भरी होगी। बैटरी भरने का काम, चावी लगाने का काम कभी न कभी हुआ होगा, उस संगम पर ही हुआ करता है। तो इसलिए अभी खास इस प्रकार के टॉपिक के ऊपर चिंतन करने का एक मौका मिल रहा है सभी को। तो इसके अंतर्गत आज मेरी बारी है। तो ये शब्द ऐसा लगता है कि जैसे कि बाहुबल की बातें, जहाँ ताकत होती है, जहाँ गैदरिंग होता है, उसमें लोगों को स्वतः हिम्मत आ जाता है। जिसके पास में ज्यादा ताकत होती है, जो बुद्धिबल से आगे होते हैं, वो जहां भी जीत प्राप्त करते हैं, इससे प्रभावशाली बन जाते हैं। जिसके पास में प्रभाव होता है, उसको सभी मानते भी हैं, उसकी बातों को सुनते भी हैं। लेकिन ये हुआ बाहुबल की बातें, और इसको अगर कन्वर्ट किया जाए, योग बल में अगर कन्वर्ट किया जाए, तो इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। वो दूसरों के ऊपर लाठी चलाते और हम अपने ऊपर लाठी चलाते। तो अपने ऊपर लाठी चलाना अर्थात अपने आप को जानना, अपने आप को मानना और अपने आप को परिवर्तन करना। और फिर हम जिस रूप से अपने को बनाएंगे, तब फिर हम दूसरों के ऊपर भी लाठी चला सकेंगे। भैंस अर्थात जो सत्ता होता है, सत्ता के ऊपर हम आसीन हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम सब अपने ऊपर ही अटेंशन रखने के लिए, अपने ऊपर परिवर्तन करने के लिए, अपने को परिवर्तन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो हम सब दूसरों को लाठी चलाने वाला व्यक्ति पहले शास्त्रों बाद अपने ऊपर लाठी चलाता है, प्रयोग करता है। कई बार खुद के ऊपर भी लाठी बरसती है, बाद में जब उस समय उसको भूमिगत स्थिति कहा जाता है, भूमिगत कहते हैं। भूमि अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से किए जाने वाली जो तपस्या होता है, साधना, त्याग होता है। पहले कोई किसी को जो जानता है, न कोई किसी को पहचानता है। जब धीरे धीरे उसके जीवन में निखार आती है, परिवर्तन आता है और हर प्रकार से झेलने की खूबी खासियत जीवन में आते है, तो फिर धीरे धीरे वो मैदान में आता है। इसीलिए पहले हम खुद को ही जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो बलिदान के जो लिस्ट में बाबा ने बलिदान में दिए होंगे कभी, कि बच्चे जब जब तुम अपने को संपूर्ण रूप से जान जाओगे, तब तुम संपूर्ण बन जाओगे, संपूर्णता को प्राप्त कर लोगे। तो दुनिया में तो प्रभावशाली जो व्यक्ति होते हैं, उनकी बातें तो आज सुनते सुनते सब थक चुके हैं। जन्म जन्म से संसार में सभी आत्माओं के ऊपर माया का अटैक है, और कितनों को सुनेंगे, कितनों को सुनाएंगे। आज एक का सुनते हैं, कल उससे बढ़कर दूसरा आ जाता है, कल दूसरों को मानेंगे, परसों तीसरा आ जाता है। किसका माने और किसका न माने। इसलिए दुनिया में कहा भी जाता है, सुनो सबके करो मन के। तो इसलिए आज सब आत्मा में उतना ताकत रही नहीं है कि किसी का बातें सुन करके हम विवेकानंद बन जाए चाहे बुद्ध बन जाए, क्योंकि आत्मा में शक्ति न होने के कारण से सुनना तो होता है। सिर्फ आज दुनिया में कोई भी बातें सुने जाते हैं उसको सिर्फ रेफरेंस देने के लिए यूज किया जाता है। प्रैक्टिकल में दिल में उतारना ये किसी के पास में उतना ताकत नहीं आज। इसलिए हम सबको अभी स्वराज्य अधिकारी बन करके और फिर विश्व के ऊपर राज्य करने के लिए बाबा तैयार करा रहे। बाबा ने बोला है कि तुम अभी स्वराज्य अधिकारी, अभी के स्वराज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे भविष्य में जाकर के। इसलिए हम सब अपने को यहाँ पर उस रूप से देखना चाहते हैं जैसे बाबा हमको देखना चाहते हैं। बाबा के आज से उम्मीद है और बाबा की चाहना है कि बच्चे अच्छे बन जाए, क्योंकि विश्व में जिन्होंने भी समय प्रति समय सत्ता को हाथ में लिए हैं, उस सत्ता पाने वालों ने भी दुनिया में कई बार ऐसा हुआ है कि सत्ता का दुरुपयोग करके आशीर्वाद पाने की जगह पर, शुभ भावना पाने की जगह पर, दुआएं पाने के स्थान पर बदबुओं से अपने जीवन को सजाए। इसलिए दुनिया में सत्ता को दुरुपयोग करने वाले कई ऐसी हस्तियां हैं जिसका दुनिया में नाम है। हिटलर का नाम दुनिया में आज भी फेमस है कि रमन नीति से लोगों को उस हिसाब से अपना सत्ता चलाना। काल मार्क्सवादी लेनिनवादी जो कहते हैं और माओ से तुम हुए हैं, इन्होंने संसार में दमन नीति को अपना करके लोगों को शासन किया है। और कई ऐसे कम्युनिस्ट कंट्रियां हैं, लोगों को बोलने दिया नहीं जाता है। और जहाँ बहुदलीय नीति है बोलना तो सबको ओपन होता है, लेकिन यहाँ पर जो स्वतंत्र होता है बोलने के लिए आजादी होती है तो यहाँ के लोग भी दुखी है और जहाँ बोलने नहीं मिलता है वहाँ के लोग भी दुखी है। तो यहाँ के लोग ज्यादा बोलने से दुखी है और वहाँ बोलना न पाने से दुखी है, दुखी सब है। इसलिए कहा जाता है कि गरीब तो अपनी गरीबी से रोता है और धनी जो होते हैं गरीबी की सीरियल देख के रोते हैं। रोना सबको है, इसलिए बाबा कहते हैं कि ये तो रोने की दुनिया है। रोना तो सबको है चाहे कहीं भी हो कैसे भी हो। एक कई माता जी सुना रही थी कि एक बहुत संपन्न परिवार का व्यक्ति, तो कहता कि कभी कभी मुझे ट्रेन में भी सफर करने दो कहता है भाई। और वो इतना बिजी रहता है कि उसको ट्रेन में जाए तो कई कारोबार ठप हो जाते हैं, इसीलिए उसने भूल से कभी ट्रेन में चढ़ने को मिला ही नहीं, एवरी डे उसको प्लेन का ही सफर करना पड़ता है। इसीलिए प्लेन का सफर कर करके वो दुखी है। इसीलिए हम सबको जो पता है कि दुख और सुख तो हमारे हाथ में है। अगर हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, अपने को शक्तिशाली बनाते हैं और हम अपने अंदर अंडरग्राउंड हो जाते हैं तो हर दिन हम सुखों का अनुभव, शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव हम नेचुरल करते हैं। और थोड़ा बाहर मुखी हो जाते हैं, कभी ठीक से योग नहीं जुट पाता है, सो पर अटेंशन कम हो जाती है, बाहर मुक्ता में आ जाते हैं तो उस समय हम खुद ही दुखी हो जाते हैं। इसीलिए दुनिया के ऊपर शासन करने वाले पहले स्वशासन बन जाते हैं। स्वशासन बनना जरूरी है। स्व पर शासन करने वाला ही सुशासन कर सकता है। तो सुशासन के लिए हम सब कितना सशक्त बने, क्योंकि बाबा ने तो बोला है कि आगे जाके कलकत्ता के जो बैक्टीरिया ग्राउंड भी तुम्हारे लिए ऑफर करेगा, ऐसे दिन आएंगे तुम्हारे लिए। तो तो अभी अच्छे इंसान की जरूरत है संसार में जाए तय। कोरम मचा हुआ है, हर घर में लड़ाई है, हर मन में लड़ाई चल रहा है। कोई ऐसा दुनिया में ऐसा चीज नहीं है कि जहाँ व्यक्ति विकास के नाम पर इतने विकास कर चुके हैं, लेकिन विकृतियों ने भी उनके ऊपर हावी होने का चांस लेना छोड़ा नहीं। इसीलिए एक भाई सुना रहे थे कि जापान इतना विकसित देश है, लेकिन विश्व में सुसाइड करने वाले देश में पहला नंबर में आता है। क्यों? क्योंकि लोगों के साथ में मिलना जुलना, बातें करना, आज जो हमारे यहाँ की संस्कृति ऐसा और सभी देश में नहीं मिलते। इसीलिए लोग अंदर ही अंदर सुकुपेशन हो जाता है, उसके बाद में हाँ गुमराह हो जाते हैं। कोई बात किसी को सुनाने का होता नहीं। विकास की जो चरम सीमा ने विकृतियों का भी चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। इसीलिए हम जितना अपने आप को, जैसे कि स्वराज्य अधिकारी सुशासन में टिकते हैं, तो जितना समय, जितना लंबा समय हम अपनी स्थिति को बना के रखते हैं, उतने ज्यादा जो वाइब्रेशन, जो वायुमंडल बनता है, आगे जाकर के वही हम सबको मदद देता है। क्योंकि हम सब जानते हैं, बाबा ने कई बार सुनाया है कि लंबा समय का अभ्यास ही बाद में काम आएगा। जैसे कि हम सब ने स्कूल में जब पढ़ाई करते हैं, जो शुरू से पढ़ाई करने में अटेंशन देते हैं, उस समय पेपर के टाइम में उनको कोई टेंशन नहीं होता है। वो तो उस समय खाएंगे, कूदेंगे, खेलेंगे। और जिन्होंने पेपर का टाइम में, पढ़ाई के टाइम पर ध्यान नहीं दिया है, तो उस समय जब परीक्षा, जब एग्जाम नजीक आने लगता है, तो उस समय व्यक्ति इतना अंडरग्राउंड हो जाता है। लेकिन उस समय पढ़ा हुआ सारी चीजें गैलप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो तो खाए खेले कूद रहे हैं, जो जिन्होंने पहले से अभ्यास किया है, पूरा तैयारी में है। और ये तैयारी करने में कई बार तो कितने का दिमाग भी खराब हो जाते हैं ज्यादा पढ़ने से। इसलिए समय अनुसार अगर हम अपने को परिवर्तन करते हैं, तो समय का और उस चीज का फायदा सबको मिलता है। इसलिए यहाँ पर आज हम सब गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पास में वो ताकत, वो शक्ति बाबा ने दिया हुआ है कि दुनिया के आगे हम सैंपल बनते हैं। स्वराज्य अधिकारी के बारे में और हम आत्मा के बारे में जितना गहराई से हमने जाना है, आज तक इतने कोई भी संसार में नहीं जान सकता है। 7 दिन का जो स्टूडेंट बाबा का बच्चा बन जाता है कोर्स करके, तो वो संसार के सभी का सभी, जितने भी दुनिया में फिलासफर है, फिलासफी है, उसको 7 दिन का स्टूडेंट उसको फेल कर सकता है। तो 3-4 दिन पहले ये बाजार में कोई प्रोग्राम था कोई दादा भगवान का, तो 1-2 दिन का प्रोग्राम था, सब लोग इकट्ठे हुए थे। तो यहाँ पर वो लोग आए थे ओम शांति भवन में, तो गाइड करने के लिए मौका मिला, 2-4 लोग थे। तो आत्मा के बारे में जो बातें चर्चा चली, तो चर्चा चलने के बाद में उनको तो कोई एबीसीडी भी पता नहीं है आत्मा के बारे में, और वो बहुत कुछ सुना रहे थे, आत्मा ये होता है, वो होता है, ऐसा तैसा बहुत कुछ। लेकिन हमने उसको अथॉरिटी से कहा कि जो चीज आप कह रहे हो ना, वो प्रैक्टिकल सबूत हमें यहाँ पर आपके आगे, जिसके भी जितने भी क्वेश्चन है, आपका उत्तर हमसे मिलेगा आपको। क्योंकि आज हम भी 22-25 साल से लगे हुए हैं, बाल ब्रह्मचारी जीवन जी रहे हैं, तो क्या समझ के रखा है। इस तरीके से बोला, उसकी आवाज बंद हो गई। हिम्मत नहीं निकला उसको बोलने की। प्रैक्टिकल सबूत है, और उसको हम प्रैक्टिकल में एवरीडे अनुभव करते हैं, और वो हमारा है, वो हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है। जो आप भगवान कह करके इतना दूर उसको रख दिया है, लेकिन उससे करीब हमारा दूसरा कोई नहीं, इस तरीके से अथॉरिटी के शब्द। तो सुन के वो हैरान हो गया। तो फिर कल परसों नक्की वाकई में जा रहे थे, तो वो मिल गया उधर। तो फिर दो हाथ जोड़ करके नमस्कार कर रहा था, पता नहीं क्या होगा उसको भी। तो इस कारण से तो हमारे पास में जिस प्रकार का अनुभव है, तो इसीलिए आज दुनिया की अधोगति की ओर दुनिया जा रही है, गिरती कला की ओर दुनिया जा रही है। लेकिन बाबा के बच्चे सब चढ़ती कला के लिए, बाबा कहते हैं कि तुम्हारी तो चढ़ती कला होनी है। बाबा ने बोला भी है कि बच्चे अगर कोई सच्चे दिल से प्यार से एक बार बाबा कहता है तो उसको मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, उसको लेकर के ही जाऊंगा, इसीलिए कैसे भी करके। तो इसीलिए बाबा इतने बड़े हमारे विश्व का मालिक, आज उनका प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है। इसीलिए कभी न कभी तो भगवान के इस संसार में प्रैक्टिकल पार्ट चला होगा, तभी तो संसार में इतने शास्त्रों में, इतने मंदिरों में, देवालय शिवालयों में जो यादगार बना है, तो कभी न कभी तो चला होगा ना। तो उस समय अभी चल रहा है, दुनिया को हम इस तरीके से बताते हैं। तो कभी कभी वो भी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे गांधी जी का अभी फोटो देखना पड़ता है, उसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। जब गांधी जी साकार में थे तो उसको प्रैक्टिकल में देखने को मिल जाता था, और गांधी जी क्या है, और उनके साथ में कई बार बातचीत हुई होगी, कई भाषण सुने होंगे, कई को करीब पाने का मौका मिला होगा। तो आज के जनरेशन को ये बातें सुनाएंगे तो क्या कहते, कभी कोई होकर के गए होंगे, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनका जन्म स्थान से लेकर के जन्मदिन को बातें तो उनको पता चल जाता है, लेकिन सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, फोटो में देखना पड़ता है। तो इस रीति से आज स्वयं भगवान हम सबको इतना शक्तिशाली बना रहे हैं, इतना पावरफुल बना रहे हैं, आगे जाकर के हम सबका जय जयकार होना ही है। तो इसीलिए कोई कैसा भी है, बाबा ने बोला लास्ट से लास्ट वाला स्टूडेंट भी बाबा के दिल में है, क्योंकि संसार में इतने बड़े धुरंधर हुए हैं, धनवान के नाम से सुपर टेन टॉप में उनका नाम निकालते हैं, और कितने पैसे इनके पास में। तो बाबा ने बोला यहाँ का लास्ट स्टूडेंट भी उनसे कई गुना आगे है, कि स्वर्ग में क्या हो रहा है वो तो पर्दा खोल करके झांक करके भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन मेरा बच्चा वहाँ का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए बाबा ने जो हम सबको बताया, संगम पर सबके अपने अपने क्वालिटी, अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी योग्यता है। संगम में भी ट्रेन में तो सब बैठे हैं, तो ट्रेन में कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे आ रहा है, लेकिन है कहाँ, ट्रेन के अंदर ही है। इसीलिए एक दिन मंजिल पर पहुंचना ही है, सब पहुंचेंगे ही। इसीलिए उसमें दिखाया है कि अभी जो भैंस का ही प्रयोग क्यों हुआ उसमें, जैसे कि जिसका लाठी उसकी भैंस, भैंस थोड़ा सा है ना ऐसे कि जड़ बुद्धि होता है, और दूसरी बात है कि भैंस को असुर का वाहन दिखाया है, असुरी प्रवृत्ति। जैसे कि आज हम देह वाहन में आते हैं तो असुरी संस्कार नेचुरल इमर्ज हो जाते हैं, देह वाहन, देह अभिमान, जो देह अहंकार हमारे अंदर नेचुरल है ये, लेकिन देह वाहन में जो मीटर चढ़ जाता है आत्मा भान से, जैसे मीटर कभी कभी रेडियो चलाते हैं तो मीटर किस में कहाँ लग जाता है, तो उस समय उस संस्कार नेचुरल इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने आत्मिक भाव को धारण करोगे तो देह भान के अनेक प्रकार के जो रूप रंग, जिस प्रकार की यो ऐसा वो ऐसा है, इस प्रकार की जो भावना हमारे अंदर जागृत होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और आत्मा के स्वरूप में होने से हम कुछ जो सुख मिलता है, जो कल के वरदान में बाबा ने सुनाया, तो परसों या कल आत्मिक बाप को धारण करेंगे तो अनेक बाप खत्म हो जाएंगे। तो दुनिया में आज इस प्रकार की नजरिया किसी के पास में नहीं हो सकता है, क्योंकि आज कोई ऑफिस में ऑफिसर होता है तो उसके ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने भी कर्मचारी हैं, जिस भी लेवल के हैं और जिस भी पढ़ाई के आधार से उनको पोस्ट मिला हुआ है, और सबको देखने का नजरिया उसका अलग अलग होता है, क्योंकि जैसे व्यक्ति ऐसे व्यवहार करते हैं। लेकिन बाबा ने हम सबको जो रूहानी पावर दी है, रूहानी शक्ति दिया है, जिसके बल से हम सबके प्रति एक ही नजर, एक ही दृष्टिकोण, आत्मिक स्वरूप में आत्मा भाई के रूप से देखते हैं। आत्मा देखने से ये चीज हमको स्वतः ही अनादि स्वरूप की याद और आदि स्वरूप की याद आती है, और जन्म जन्म की रिश्ता और जन्म जन्म की हमारे ये नाता, उस स्वरूप में हम टिक जाते हैं तो हमको उसमें खुशी मिलती है, शांति मिलती है, अपनापन का फीलिंग होता है, और हम उसमें जैसे कि सुख का अनुभव करते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। इसीलिए हम सब यहाँ पर प्रैक्टिकल जीवन द्वारा आने वाली दुनिया के लिए रिहर्सल कर रहे हैं अंडरग्राउंड होकर के। जैसे संकल्प चला उसमें कि लाठी हाथ में लाने तक के लिए कितना मेहनत करना पड़ता हो, लाठी किसके हाथ में आ सकता है, लाठी कौन लंबा समय पकड़ सकता है, और लाठी दूसरों को ऊपर चलाने के लिए कितना उसकी परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति चाहिए, और सत्ता का दुरुपयोग जिन्होंने समय पर करके लोगों को सुख शांति दे नहीं सके उनको लोग कैसे उखाड़ के फेंक देते हैं। इसीलिए ये समय है, जैसे दादी भी तो इतने, हमारी दादी प्रकाशमणि संस्था की हेड बन गई, और उन्होंने सबका हित के अलावा कुछ भी नहीं देखा, पद पोजिशन और स्टेटस में होने के बाद भी सबका हित के अलावा उन्होंने कुछ नहीं देखा, और उसमें अथॉरिटी नहीं, अपनापन का अनुभव, अपना प्यार और अपना प्राप्ति के आधार से उनको प्रैक्टिकल ज्ञान देकर के आगे बढ़ाया, क्योंकि सत्ता तो सबको मिलता है, उनको भी मिलता है, लेकिन उनको तो कहते ना, उनको सत्ता चलाने के लिए साम दाम दंड भेद सब पर का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर स्नेह के आधार से दुनिया चलती है, और जिसने लोक पसंद का सर्टिफिकेट नहीं लिया 100% का, तो उस आधार से आगे का सत्ता, आगे का राज्य भाग्य हमको तय होता है। इसीलिए हम इसका भलीभांति जानते हैं कि बाबा ने बोला है कि तीन प्रकार के सर्टिफिकेट जिसके पास में होंगे, संपूर्ण रूप से होंगे, वही वहां जाकर के विश्व महाराजन बनेंगे। तो बाबा ने कल भी बोला था कि मात पिता तो विश्व महाराजन विश्व महारानी बनेंगे, ऐसे तख्त नशीन बनने के लिए तुम बच्चों को भी पुरुषार्थ करना है। तो प्रैक्टिकल में हमारे सब बन के दिखाए, तो अभी हमारी यहाँ पर रियल सेल चल रही है बनने के लिए। इसलिए बाबा तो कहता है कि ब्राह्मण की माला बनेगी नहीं, क्योंकि कभी चढ़ के ऊपर इतना ऊपर चले जाते हैं तो कभी फिर ऐसे ठंडे हो जाते हैं, ठंडे ठाकुर ठंडे पुरुषार्थी, फिर उनको दोबारा रिचार्ज करना पड़ता है। इसीलिए हम सब यहाँ पर उस प्रकार से अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, और आप समान बनाने की बातें होती है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर हमारे राजस्थान के जो गवर्नर हुए हैं चन्ना रेड्डी जी, जब यहाँ आकर के वो बाबा के बच्चे बन गए तो उनको यहाँ बहुत सब कुछ अच्छा लगा, और बाबा के अन्य बच्चे कैंसर सरोवर से लेकर के कई सारी बातें बनाने में उनका मदद मिला, यज्ञ में बाबा ने उनसे सहयोग लिया, मैंने मदद है ना, बाबा ने अपना हिसाब से आगे बढ़ाए। तब यहाँ से वो अपने गांव जा रहे थे अपने शहर, तो उनको पुट्टपर्ती साई बाबा के पास में जाने का उनको मौका मिला, तो उनको बुलाए भी थे, तो वहाँ जाकर के साई बाबा का दुनिया में इतना जय जयकार है, तो वहाँ जाकर के देखा, तो देखा तो उनको पूछा उन्होंने कि देखो आप इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और इतना सिद्धि और इतने बोलबाल आपको दुनिया में है, लोग मानते हैं, तो आपने अपने जैसे दूसरे किसी को बनाए? तो उसको पूछा तो उसका सिर नीचे हुआ, आज तक मेरे बराबर कोई बन ही नहीं सका है, न बन पाएगा, ऐसे कुछ बोला उन्होंने। तो उन्होंने ये संदेश सुनाया कि दादी प्रकाशमणि जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो हेड है, उन्होंने अपने जैसे 10,000 बहनों को बनाया है। तो फिर आगे जाकर के अपना ये जो अपना जो बनाए रहे रखा है आपने, जो विघ्न रूप बन जाएगा अपने जैसा न होने के कारण से, जब आप लोगों ने सुने होंगे, जब श्री पुट्टपर्ति साई बाबा ने जब शरीर छोड़े थे तो उस समय कई सारे सामान इधर उधर जो धन को लोगों ने अपने हाथ में लेने की कोशिश की और कहीं कहीं बहुत सारी जगह पकड़ में आए। इसीलिए कोई सुना रहे थे कि ब्रह्मा बाबा जब गए तो संस्था बंटवारा हो जाएगा, कहीं ऐसे सोचते थे। दादी प्रकाशमणि जाने के बाद में भी कोई सिरोही का कलेक्टर कोई किसी के द्वारा सुना रहे थे कि अभी यहाँ बहुत बड़ा तोड़फोड़ होगा, इनके बंटवारा हो जाएगा। लेकिन बाद में अंदर ही अंदर ऐसे हस्तांतरण होगी, सत्ता दादी जानकी को बना दिया गया, तो किसी को पता ही नहीं चला। क्योंकि हमारी संस्था की जो खासियत है कि ब्रह्मा बाबा ने हम सबको कभी भी अपने को मालिक नहीं समझा, बाप समझ करके सबको इतनी पालना दी और किसी के भी शक्ति को बाबा ने दमन करने की कोशिश नहीं की, सबको आंतरिक शक्ति को जागृत करके सबको महान बनाने का कर्तव्य किया। तो दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति बन जाता है तो उसके नजदीक में किसी को आने ही नहीं देते, 10 फुट दूर ही रखते उनको, अगर आएगा तो फिर मेरे जैसा होने का, और कई बात इज्जत प्रतिष्ठा की बातें होती है और उसको करीब आने ही नहीं देते। इसीलिए यहाँ अनुभव सुना रहे थे कि साधु संत सम्मेलन चल रही थी, धर्म सम्मेलन, तो यहाँ पर बहुत सारे साधु आए हुए थे, महामंडलेश्वर तक आए हुए थे दुनिया के। तो दादी के साथ में अपने बाबा बहने इतने नजदीक मिलती और दादी कहीं से बाकी लेती थी इस तरीके से, तो वो लोग हैरान हो गए। तो दादी को बोला उन्होंने कि आपने चेले को इतना नजदीक क्यों आने देते हो। उन्होंने पूछा, लेकिन फिर उन्होंने बोला दादी हम तो अपने नजदीक में 10 फुट नजदीक भी आने नहीं देते। तो दादी ने इतना प्यार पालना दिए है, इसलिए तो सब लायक बने और सबको बना के दिखाने के लिए उनके पास में भी प्रेरणा मिली है। तो इसलिए दुनिया में इस तरीके से नहीं होता है, इसीलिए सत्ता हाथ में है, लेकिन सत्ता हाथ का हाथ में आया मना उसका दुरुपयोग यहाँ पर कहीं भी नहीं हुई है। और सबका मौलिक अधिकार का प्रयोग करके आंतरिक शक्ति को विकास में विकसित करके ये संस्था आगे बढ़ी है। दुनिया में ऐसा नहीं होता है कोई गुरु किसी को मंत्र देता है तो उसके अलावा किसी को दूसरों के कान में मंत्र सुनाने का अधिकार नहीं होता है। उसके आके आगे आके पाव पड़ना ही पड़ता है, तब उससे इस चीज को मंत्र सुनाने का अधिकार होता है। लेकिन बाबा ने तो हमको जो मनमाना भाव का मंत्र दिया है, जितनों को सुनाओगे उतने अच्छा है और उतने बाबा के बच्चे बनते जाएंगे, संदेश उनके कान में पड़ जाएगा और मध्या जी बाबा की स्मृति में रहोगे तो नशा और खुशी बनी रहेगी। और ये मंत्र है, जितना सुनाओगे उतना फायदा, लेकिन उनको ये मंत्र सुनाने का अधिकार नहीं होता है। एक बार हम भी गए थे वो साई बाबा, अच्छा हमारे जो सतपाल महाराज वहाँ धर्म सम्मेलन करते थे बंगाल में, तो हम भी उनके नजदीक होने की कोशिश की हमने, तो वहाँ जाकर के उनके सत्संग में जाने का मौका मिला। तो 2-3 दिन हम रुके थे वहाँ पर, तो वहाँ पर सुबह सुबह सबको 500-600 का जो ग्रुप होता था तो सबको मंत्र दिया करते थे और उनके जो महात्माएं होते थे उस तरीके से मंत्र देते थे। तो हम भी गए उन सबको जानने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि भगवान बाबा का परिचय तो था ही नहीं, तो जो मिला सो ठीक है बोल के हम गए थे। तो बहुत सारी बातें, और जो जब विदाई होने का टाइम होता है जो सिंदूर होता है ना, सुहाग करके लगाते हैं, तो गुरु जी का उसके चरण को छो करके छुला करके फिर अपने उस कुछ न कुछ थोड़ा सा अपने डब्बे में डाल करके ले आते हैं और साल भर लगाने के काम करते हैं। तो इस तरीके से चरणों से भी नीचे बनाया है सबको, लेकिन बाबा ने तो हम सबको वो अथॉरिटी दी है कि मेरे बच्चे, मेरा तो टांग भी नहीं है, टांग छूने की पाव छूने की जरूरत भी नहीं, तो इसीलिए बाबा ने बोला कि किसके शरण में पड़ने की भी जरूरत नहीं। आज तो हम घर में जाते हैं पहले तो माँ बाप को चरण जब तक नहीं छूते थे तो लोग कहते थे कि ये तो जैसे कुछ बन कर गया है, लेकिन अभी माँ बाप तो दूर से टांग खींच लेते हैं, ये छूने नहीं देते, ये इतना बड़ा रहा हमें इसका टांग छूने कैसे दे, है ना, नेचुरल हो जाती है। तो इसीलिए बाबा ने हम सबको स्वराज्य अधिकारी बन करके अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर राजा बनना, अधिकारी बनना, और ये इसके द्वारा ही जब हमारे हाथ में लाठी होगी, लाठी सोच समझ करके होगा, कई साल के रियल साल के आधार से होगा, अनुभव के आधार से होगा, अथॉरिटी के आधार से होगा, सर्व गुण और सर्व शक्तियों के आधार से होगा, और तो उसको कई बार खुद ने खुद के ऊपर रियल सेल किया होगा, तो फिर सत्ता के ऊपर में भी हम लाठी जला सकते। इसीलिए हम सबको इस प्रकार से जो बाबा ने हम सबको बना रहे वो हम प्रैक्टिकल में बन के दिखाए, और हम सब अपने तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में हम सब अपने आप को बनाने के लिए लगे हुए हैं, जे जान दे करके। तो बाबा भी हम सबको देख रहे हैं, जान रहे हैं कि उनका सहयोग और सुभावना सदा हमारे ऊपर नेचुरल पड़ रही है, तो उनके आस और उनकी उम्मीद को हम एक दिन जरूर पूरा करेंगे। ओम शांति।